आकाश और सुमित आगे आए। दोनों ने मिलकर अरमान से ध्रुव का गिरेबान छुड़ाने का प्रयास किया। ध्रुव थोड़ा भावुक हो गया। हर बार दादाजी की तबीयत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खराब होती है अरमान भाई, आप चाहे माने या ना माने। ध्रुव के ये कहने पर अरमान ने तुरंत उसका कॉलर छोड़ दिया। वो उस कमरे से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वो उस वक्त थोड़ा टूटा हुआ था। आकाश और सुमित बोले, ध्रुव तुम्हें अरमान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितना ज्यादा इमोशनल है। उनकी नज़र आहान पर पड़ी, जो सदमे की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वे तीनों जानते थे कि आहान उन सब में सबसे कमज़ोर है। किसी की जरा सी चोट और दुख से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। आकाश और सुमित आहान को लेकर बाहर चले गए और उसे समझाने लगे कि उसे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो दादाजी के सामने गुमसुम रहेगा तो दादाजी को भी बुरा लग सकता है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए, वे दोनों आहान को दिलासा देते हुए समझाते रहे। ध्रुव दादाजी के साथ रुका था। अरमान आंखें बंद करके दादाजी के पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचने लगा। दादाजी का पहला हार्ट अटैक आया था तब अरमान बहुत डर गया था। वो अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। उसकी जिंदगी में कोई और रिश्तेदार नहीं थे, केवल उसके दोस्त और दादाजी, यही उसकी फैमिली थी। तब दादाजी ने उससे शादी करने के लिए कहा था। अरमान दादाजी को जल्द से जल्द ठीक होते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि वे चाहें तो किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। दादाजी उसकी शर्त सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके पोते ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले मनोज की बेटी प्रियंका को अरमान के लिए चुना था। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, हल्के से सांवले रंग की थी, इसलिए अरमान ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन जब अरमान को पता चला कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है, तो उसका गुस्सा बढ़ गया। आस्था की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभने लगी थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे आस्था दिखाई दे गई। पहले तो अरमान को लगा कि शायद वो आस्था के बारे में सोच रहा है, इसलिए आस्था उसे दिखाई दे रही है। लेकिन जब उसने आस्था के पीछे देव को आते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं है और वाकई आस्था वहां आ रही है। अरमान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। वो आस्था को वहां नहीं देखना चाहता था, लेकिन आस्था उस वक्त दादाजी की फिक्र में दौड़ती चली आ रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। अरमान तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आस्था जो तेजी से दादाजी के कमरे की तरफ जा रही थी, अचानक किसी से टकरा गई। उसे लगा मानो उसका सर किसी पत्थर से टकरा गया हो। आंखें खोलकर सामने खड़े अरमान को देखकर उसके होंठ कांपने लगे। अरमान गुस्से से लाल आंखों के साथ आस्था को घूर रहा था। दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादाजी की ऐसी हालत करने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला? अरमान के ये कहने पर आस्था के हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगी कि आखिर उसने क्या किया है, दादाजी की हालत उसकी वजह से कैसे बिगड़ सकती है। आस्था ने खुद को शांत किया और अरमान से कहने लगी, मुझे दादाजी से मिलना है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। आस्था अरमान के बराबर साइड से जाने लगी। अरमान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचता हुआ उस जगह ले आया जहां थोड़ी देर पहले वो खुद खड़ा हुआ था। आस्था को दीवार के सहारे लगाकर वो उसे आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, डोंट यू डेयर, दादाजी के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत, और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती का जाल मुझ पर और मेरे दादाजी या मेरे परिवार पर चला सकती हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे कभी भी रिझा नहीं पाएगी, समझी तुम? अरमान की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके पास शब्द खत्म हो गए थे। वो अपने सामने खड़े हुए इंसान को क्या कहे? अरमान गुस्से से उसे सुनाए जा रहा था। अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर आस्था का पूरा शरीर कांप रहा था। आस्था की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान की आंखों में देख सके। अरमान आस्था को गुस्से में कुछ और सुनाता, इससे पहले उसे पीछे से देव की आवाज सुनाई दी। देव की आवाज सुनकर अरमान आस्था को घूरते हुए बोला, यस। देव ने कहा, बॉस दादाजी को होश आ गया है और वे आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही अरमान ने आस्था को छोड़ दिया और तुरंत दादाजी के कमरे की ओर जाने लगा। देव ने अफसोस भरी नजरों से आस्था की ओर देखा और मन ही मन में सोचने लगा, न जाने इस बेचारी लड़की का जन्म किस अशुभ घड़ी में हुआ था जो इस जन्म में अरमान जैसे मॉन्स्टर की बीवी बन गई। फिर खुद को डांटने लगा कि उसे बॉस के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते हुए देव वहां से खिसक गया। अरमान जल्दी से अपने दादाजी के पास गया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें देखने लगा, और इस वक्त अरमान के चेहरे पर कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। वो केवल अपने दादा का हाथ पकड़े हुए सपाट चेहरे के साथ दादाजी को देख रहा था। दादाजी अरमान की ओर देखकर बोले, अरमान तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो शायद तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया है, लेकिन उस वक्त हमारी मजबूरी थी बेटा, और अब हम दिल से आस्था बेटी को अपनी बहू मान चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम आस्था बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। दादाजी की आस्था के बारे में बातें करने पर अरमान ने फौरन अपना हाथ हटा लिया।
लिया। घूरकर उनकी ओर देखने लगा, तुरंत वहां से खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दादाजी, वो लड़की कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो पाएगी। वो मुझसे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से दूर रहेगी। भले ही वो इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन मैं उसे आपको बिल्कुल देखने नहीं दूंगा। आकाश और सुमित ने सुना कि आस्था यहाँ हॉस्पिटल में है। दोनों अरमान से बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी यहाँ आई है और तूने भाभी को बाहर रोक कर रखा हुआ है, ये क्या किया तूने? भाभी क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? अरमान दोनों की बातें सुनकर घूर कर उनकी ओर देखने लगा और बोला, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों ने ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सब, वो लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, समझी तुम लोग? तधी 5555 शेयर रिव्यू प्लीज।